अब मुजरिम जो है वो उसको सजा मिल चुकी है, मर चुका है, तो अब उसके साथ कैसा मामला किया जाएगा कि तजहीज़ो तकफीन की जाएगी, नमाज जिनाजा पढ़ी जाएगी, दुआए मगफरत की जाएगी और उसको बुरे लफ्जों से याद नहीं किया जा सकता। किसी के लिए जायज नहीं है कि इसका जिक्र बुराई से करे। बुखारी की रवायत है कि जब रजम से माइज बिन मालिक की मौत वाकया हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खैर से याद किया, फरमाया यानी खैर से याद किया और उसकी नमाज जिनाजा खुद पढ़ाई। और इसी तरह मुस्लिम में हजरत बुरैदा की रवायत है कि हुजूर ने फरमाया माइज बिन मालिक के हक में दुआए मगफिरत करो, इसने तो ऐसी तौबा की है अगर एक पूरी उम्मत पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी हो। इसी तरह हमें एक रवायत मिलती है कि हजरत बीबी गामिदिया जब रजम से मर गई तो हुजूर ने खुद उसकी नमाज जिनाजा पढ़ाई और हजरत खालिद बिन वलीद ने इसका जिक्र बुराई से किया तो आपने फरमाया खालिद अपनी जबान को रोको, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसने तो ऐसी तौबा की थी अगर जालिमाना महसूल वसूल करने वाला भी वो तौबा करता तो बख्श दिया जाता। तो आप देख लीजिए कि बीबी गामिदिया जो थी इनको जब रजम किया गया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उसे पत्थर मारा रजी अल्लाह अन्हो, जिससे खून के चंद छींटे हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो पर पड़ गए। तो आपने इस औरत को गाली दी तो इस पर आपने हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो को सख्त तंबीह की। क्यों आपने सख्त तंबीह की? क्यों? इसलिए कि यानी जब उसने तौबा कर ली, खुद से उसने बार बार आकर इकरार किया, तो अब उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो उनको जो है वो आकर कुछ भी कहें। इसी तरह माइस के वाकये के बाद जब उनको सजा दी जा चुकी तो रसूलुल्लाह एक रोज गुजर रहे थे रास्ते से, आपने दो लोगों को हजरत माइस का जिक्र बुराई से करते सुना। चंद कदम आगे जाकर एक गधे की लाश सड़ती हुई नजर आई, वहां पड़ी हुई नजर आई। आप ठहर गए और इन दोनों आदमियों से कहा आप हजरात इसमें से कुछ खाइए। गधे की लाश सड़ती हुई जो नजर आई आपने कहा इसको नोश फरमाइए। उन्होंने अर्ज किया या नबी अल्लाह इसे कौन खा सकता है? आपने फरमाया अपने भाई की आबरू से जो कुछ आप अभी खा रहे थे वो इसे खाने की बनिस्बत बदतर चीज थी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी गामदिया की नमाज जिनाजा के मौके पर अर्ज किया, क्योंकि हजरत यानी जब उनकी नमाज जिनाजा होने लगी तो हजरत उमर पूछने लगे या रसूलुल्लाह क्या अब इस जानिया की नमाज जिनाजा भी पढ़ी जाएगी? आपने फरमाया इसने वो तौबा की है अगर तमाम अहले मदीना पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी हो। बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह की रवायत है कि एक शख्स को शराब नोशी के जुर्म में सजा दी जा रही थी, किसी की जबान से निकला खुदा तुझे रुसवा करे। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया इस तरह ना कहो, उसके खिलाफ शैतान की मदद ना करो। इन सारे वाकयात से हमें क्या बात पता चलती है कि इस्लाम में सजा की असल रूह क्या है? इस्लाम किसी बड़े से बड़े मुजरिम को जब सजा देता है तो फिर क्या होता है? खैरखाही के जज्बे से देता है ना? जब सजा दे चुकता है तो उसको रहमत और शफकत की नजर से देखता है ना? अब आप देखें कि और फिर इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता सजा देने के बाद कि लोग जबान पर उसका जिक्र जो है वो बुराई के साथ ही करें, बल्कि इस्लाम फिर क्या चाहता है कि उसका जिक्र जो है वो इज्जत के साथ जो है वो किया जाए। तो ये है ये सारी बात कि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के इस कानून को भी नाफिज करो। वल यशद अजाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात और अहम है, आप देखें कि वो इस्लामी ममालिक जहां ये हुदूद नाफिज नहीं है वहां पे किसी की इज्जत भी महफूज नहीं है। हर रोज अखबारात को आप देखें तो इज्जत के मुहाफिजी इज्जतों को लूटने वाले हैं। तो कौन जो है वो किसका दरवाजा खटखटाए? और आप सऊदी अरब को देख लें, वहां पे जो हुदूद नाफिज हैं तो ऐसे वाकयात जो है वो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। हमें कुछ अरसा जो है जब अब्बा जान हमारे सऊदीया में जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से गए हुए थे तो हमें हमारा घर रियाज में था और उस जगह पे था जहां पे جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں نا, تو وہاں پہ جیسے وہ اعلان کر دیتے تھے کہ فلاں دن فلاں موقع پہ یہاں پہ سزا دی جائے گی تاکہ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے موجود ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نا عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اصل بات کیا ہے جو ہم سب کے سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے حدود کو نافذ کرنے میں خیر ہے نہ کہ اس کو چھوڑ دینے میں اور اس کا جو ہے وہ مذاق اڑانے میں. اور ہمارے ہاں تو اسلامی جو قانون ہے اس کے خلاف ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی سنگ دلانہ ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ حکیم ہے, اللہ علیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انزلناها وفرضناها, کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہم نے اس کو فرض کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے خیر جو ہے وہ کس چیز میں ہے. پھر فرمایا الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکا, کہ زانی مرد نکاح نہ کرے بجز زانی کے, زانیہ عورت کے, اور مشرکتن یا مشرکہ عورت سے, وزانیتو اور زناکار عورت, لا ینکحوها وہ نکاح نہ کرے الا زانین اور مشرک, یا مشرک یا زانی مرد سے یا مشرک مرد سے, وحرم ذلک علی المومنین, اور یہ چیز جو ہے وہ اہل ایمان پر جو ہے وہ حرام کر دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات بتائی, اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ زانی اور مشرک جو مرد ہے یا زانی اور مشرک جو عورت ہے ان کا باہم جو ہے وہ نکاح نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی یہاں پر ہمارے لیے کیا بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے کسی زانیہ یا مشرکہ سے اور کسی مومنہ کے لیے کسی زانی یا مشرک سے نکاح کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے کہ اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا کہ وہ مرد اور عورت جو فحاشی میں مشہور ہوں تو ان سے نکاح کیا جائے. حرام ہے اس مرد اور عورت سے نکاح کرنا جو فحاشی میں زنا میں مشہور ہو, سوسائٹی کو پتا ہو. اس سلسلے میں واقعہ کیا ہے کہ عمر بن شعیب کے دادا نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد, غنوا نامی ایک شخص, ان کا نام کیا تھا, غنوا نامی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا. مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا, عین نون الف قاف, اور وہ مرثد کی اسلام لانے سے پہلے معشوقہ تھی, یعنی دوست تھی. جب زمانہ جاہلیت تھا تو دونوں آپس میں دوست تھے. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اسے مدینہ لے جائے گا. مرثد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا, اناق آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرف سرکتے دیکھا. جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. وہ کہنے لگی خوش آمدید, آؤ ہمارے ہاں یہ رات گزارو. میں نے کہا ناک اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے. وہ بول اٹھی اے خیمہ والو, یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگے, میں خندمہ کی راہ پر چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا. وہ آئے اور میرے سر پر کھڑے تھے, انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پر پڑا, تام اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. پھر وہ چلے گئے اور میں پھر مکہ میں اپنے رفیق کے پاس آیا اور اسے اٹھا لیا. وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا, میں اسے اٹھا کر اسخر کے مقام تک پہنچا. پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی اور پھر اسے اپنی پشت پر لاد لیا. وہ مجھے تھکا تھکا دیتا تھا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کر. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس آیت کا, آیت نمبر 3 کا عنوان یہ ہے کہ فحاشی میں مشہور مرد یا عورت جو ہے اس سے نکاح نہ کیا جائے. کیا مطلب ہے کہ زانی جو زنا کرنے والا ہے مرد ہو یا عورت, تو اس زانی کا زانیہ کے ساتھ, زانیہ کا زانی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے یا پھر مشرک کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. مومنہ یا مومن جو صالح اور صالحہ ہے ان کے ساتھ نکاح موضوع نہیں ہے. حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے لوگوں کو دے دیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سوسائٹی میں, رشتہ داروں میں, خاندان میں بعض لوگوں کے کردار کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کردار کا نہیں ہے یا یہ لڑکی اچھی کردار کی نہیں ہے. تو پھر جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ خاندان والوں کو, گھر والوں کو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, خواہ وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں, کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں, کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہوں, خواہ اس کی وجہ سے امریکہ کی سٹیزن شپ کیوں نہ ملنے والی ہو یا کینیڈا کی یا برطانیہ کی. کیونکہ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں باہر جانے کی وجہ سے, باہر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کردار اور کیسا, اور بعض باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے تو پھر کہہ دیتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہو جائے گا نا, تو کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن صالح کے لیے موضوع نہیں ہے, حرام ہے مومنوں کے لیے, مرد ہو یا عورت جن کی جو جن کی بدچلنی مشہور ہے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرتا تھا کبھی زنا لیکن پھر اس نے توبہ کر لی, اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ نکاح ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جو بری روش پر قائم ہے. اگر لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو پھر توبہ اور اصلاح کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ یعنی جو بھی انہوں نے پہلے جو بھی عمل کیا تو یہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں آیت کے الفاظ, آپ پھر ان کو ایک دفعہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الزانی لا ینکہ الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ینکہ الا زان او مشرک, کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو. وَحُرِّمَ ذَلِكَ, اور یہ حرام کر دیا گیا, علی المومنین مومنین پر. تو کہتے ہیں کہ حرم ذالک کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ ہے کہ فعل زنا مومنوں پر حرام ہے. اس کا کیا مطلب ہے حرم ذالک, کہ زنا کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے. جیسے ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یہ حدیث جو ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, گویا کہ ایمان اسے کھینچ لیا جاتا ہے جب اس وقت غلط کام کر رہا ہوتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو حرم ذالک حرام ہے مومنوں پر. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک باز اور شریف مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح قائم کرنا حرام کر دیا گیا, ان کو رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں کرنا چاہیے. جن کی بدکاری جو ہے وہ جانی بوجھی ہو تو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا جو ہے یہ گناہ ہے, اس سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس شریعت معاشرے میں انہیں قابل نفرت بنا کر چھوڑ دینا چاہتی ہے. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا, وہ اس کی لڑکی سے ملوث ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا برا ہو, تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک نہ دیا ہو. آخر کار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا, دونوں پر حد جاری کی گئی, پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا. تو اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے, अच्छा हमारे यहाँ ये भी है कि जो लोग खुद बुरे होते हैं ना, जब उनके अपने निकाह की बारी आती है तो वो जो है ना वो कहते हैं कि लड़की जिनसे उनका निकाह हो अच्छे अच्छी होनी चाहिए, शरीफ होनी चाहिए। समझ आई? और एक और बात भी है कि एक दफा एक औरत कहने लगी कि मेरा शौहर खुद अच्छा नहीं है, बुराई में मुब्तला है, लेकिन मेरे ऊपर वो बहुत शक करता है, मतलब मैं कहीं मेरा निकलना जाना आना, हत्ता कि मैं बाहर के दरवाजे तक भी मुझे खड़े होने की या मतलब कोई आए तो उसे पूछने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर मुझ पर बहुत ज्यादा सख्ती करता है ना। तो बाज़ूकात बाज़ो वैसे भी करते हैं सख्ती, जरूरी नहीं कि वो बुरे हों, लेकिन असल बात क्या है कि वैसे सूझबूझ देनी चाहिए, समझ देनी चाहिए, सख्ती से इसलाह नहीं होती ना। तो मतलब जो भी मर्द हैं या औरतें, उनको मोहब्बत और नरमी के साथ जो है वो इस्लाम के अहकामात उस पर चलना चाहिए और अमल करना चाहिए। अच्छा अगली जो आयत है, आयात हैं, ये बड़ी ही अहम आयात हैं, और आयत नंबर 4 और 5 में जो है वो कज़ब की सजा और उसके लिए शहादत का कानून बयान किया गया है। उन्वान क्या है? कज़ब की सजा और उसके लिए शहादत का कानून जो है वो क्या है, अल्लाह ताला बयान करते हैं, वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनाती, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं। अल-मुहसनात से मुराद क्या है? पाक दामन औरतें, वो औरतें जो कि निकाह में के किले में हैं। अल-मुहसनात का रूट क्या है? शाबाश, हास्वाद नून, और हास्वाद नून के मानी होते हैं किला, और किला क्या करता है? हिफाजत करता है। बाज लोग कहते हैं निकाह एक किला है, निकाह एक इंसान की इज्जत असमत की हिफाजत करता है। बाज लोग कहते हैं हास्वाद नून जो है खानदान को कहते हैं, खानदान मर्द औरत की इज्जत असमत की हिफाजत करता है। बाज लोग कहते हैं इस्लाम एक किला है, इस्लाम जो है जो मुसलमान लोग हैं वो इस्लाम में जब आ जाते हैं तो इस्लाम उनकी इज्जत असमत की हिफाजत करता है। तो मुराद फिर क्या है कि तीनों मानी मुराद भी हो सकते हैं, और फिर जो है कोई एक मानी भी मुराद हो सकता है। और यहाँ पे मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ ये लफ्ज जो है ये पाक दामन औरतों के लिए आया है जो गुनाहों से अपने आप को, जिना से अपने आप को पाक रखती हैं। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनाती, और वो लोग जो रमी करें, रामीम या फेंकें, पत्थर फेंकें, बातों से पत्थर फेंकना या अमलन पत्थर फेंकना है ना, रमी करना, जो पत्थर फेंके पाक औरतों पर, सुम्मा लम या तू फिर ना लेके आए, बे अरबाते शोहदा 4 गवाह, फजले दू हम तो उनको मारो कोड़े, समानी न जलदतन 80 कोड़े, बोला तक बालू लहुम शहादतन अबादा, फिर इनकी गवाही कभी कबूल ना करो, वा उला इका हम उल फासिकून, और यही लोग जो है ये फासिक हैं। तो यहां पर एक तरफ तो जो है वो कज़ब की सजा है और दूसरी तरफ शहादत का कानून बयान किया गया है। तो कज़ब कहते किसको हैं? मैं ये कज़ब लफ्ज बोल रही हूं, और कज़ब क्या है? इल्जाम लगाना, और इल्जाम भी हर किस्म का नहीं बल्कि जिना का इल्जाम, जिना का इल्जाम, और जिना का इल्जाम जो है इसके मानी क्या है कि फुकाह ये कहते हैं कि अगर किसी मर्द या औरत पर ये इल्जाम लगाया जाए, किसी की इज्जत के लिहाज से पाक दामन मर्द या औरत पर जिना का इल्जाम लगाया जाए तो उसको जो है वो कज़फ कहते हैं। और ये हुक्म जो है ये उस सूरत में नाफिज होगा जब इल्जाम लगाने वाले मोहसिनीन या मोहसिनात पर इल्जाम लगाएं, मतलब पाक लोगों पर इल्जाम लगाएं। दूसरी इसमें अहम बात क्या है कि काजिफ, काजिफ कौन होता है? इल्जाम लगाने वाला जो कहता है कि फलां ने ये काम किया है। मकजूफ कौन होता है? जिस पर इल्जाम लगाया जाए। किस चीज का इल्जाम? जिना का इल्जाम। तो تعزیف کی بھی کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا نا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد رائے سے لگائے اور بولتا ہو، ناطق ہو، یہ نہ ہو کہ اشارے کرے، اور جو مقصوف ہے نا اس کی بھی شرائط ہیں، پہلی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی زنا کا الزام مجنوں پہ اگر لگایا جائے تو پھر کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجنوں ہے. دوسری شرط یہ ہے بالغ ہو، اور تیسری شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، چوتھی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو. تو ان ساری باتوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ یہ جو قذف، کاذب اور مقذوف، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کسی نے بھی دیکھا اور پھر کوئی جو ہے وہ جا کے یہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہے. تو اللہ رب العزت نے اگر کوئی کسی پاک دامن پر یہ تہمت لگاتا ہے، بے قصور پر یہ تہمت لگاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے. اسی لیے تہمت زنا پر اگر وہ چار گواہ نہ لے کر آئے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے. یعنی یہ گناہ مردوں پر لگایا، یہ گناہ کا الزام مردوں پر لگایا جائے یا عورتوں پر، تو کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑوں کی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی؟ اس میں نمبر ایک بات یہ ہے کہ ناجائز تعلقات اور بے حیائی کے چرچے جو ہیں قطعی طور پر بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ سوسائٹی، اس میں زنا عام تھا، برائیاں عام تھیں اور لوگ عام یہ بات چیت کرتے تھے نا، تو قطعی طور پر زبانوں پر ایسے جملے نہ آئیں، نمبر ایک. کیونکہ اگر زبانوں پر اس طرح کی باتیں عام ہوں، سوسائٹی میں بے شک پائی جا رہی ہوں اور زبان زدے عام ہوں، تو اس سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، باقیوں کو بھی جرت ہوتی ہے، برا ماحول پیدا ہوتا ہے، زنا کرانا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ایک شخص مزے لے لے کر جو ہے وہ صحیح غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، نمک مرچ لگا کر، اور بعض اوقات اپنے پاس سے اضافہ بھی کرتا ہے، تو جذباتی شہوت کی ایک رو جو ہے وہ چل پڑتی ہے. تو اور جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں قسمت آزمائی کی جا سکتی ہے، تب آزمائی کہاں کہاں کی جا سکتی ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اسلام برے ماحول کو پروان نہیں چڑھنے دیتا. تو یہ ہے سد باب، یہ سد باب ہے کہ وہ راستہ ہی بند کر دیا جاؤ، وہ کھڑکیاں اور دروازے ہی بند کر دیا کر دو جہاں سے چور اور ڈاکو داخل ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اتنی سخت سزا اس لیے مقرر کی ہے، ایک طرف تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو اتنی سخت سزا دو جو کسی اور جرم کو، کسی اور مجرم کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شریعت پسند نہیں کرتی نا کہ یہ گندا کام کوئی کرے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے اور اگر وہ اس الزام کو جو ہے گواہیوں سے ثابت نہ کر دے، اگر الزام لگایا تو اس کو کتنے گواہ لے کر آنے ہیں؟ چار گواہ، اور اگر وہ اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے برساؤ تاکہ بلا ثبوت وہ ایسا الزام لگانے کی جرت بھی نہ کر سکے. تو پہلی سزا اس کو کیا دینی ہے؟ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا. تو پہلی سزا یہ 80 کوڑے مارو. نمبر دو، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا. آپ سوچیں کہ کتنا سخت گناہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی پھر قبول ہی نہیں کرنی نا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا، تو اب جو ہے اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جا سکتی. گواہیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، لیکن اب اس کی گواہی نہیں قبول ہو سکتی کیونکہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور خود ہی یہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ نافرمان ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ توڑ کر جو ہے وہ نکلنے والے ہیں. تو یہ سزا اس لیے دی گئی، تین سزائیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جرم جو ہیں ان سے پرہیز کریں और ये जो तोहमत लगाना है ना, इसको मुबेकात में शामिल किया गया है। मुबेकात क्या होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को उन 7 बड़े बड़े गुनाहों में शामिल किया जो इंसान को हलाक कर देने वाले हैं, जिनमें यतीम का माल खाना, जादू करना, शिर्क करना और कत्ल करना, जिना करना और किसी पर तोहमत लगाना, ये सारे जो हैं ये गुनाहे कबीरा में से हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादे ज़ालिका वअस्लहू, सिवाय इन लोगों के जो इस हरकत के बाद तायब हो जाएं और अपनी इसलाह कर लें। फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह उनके हक में गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला उनको जो है वो बख्शने वाला है। तो इससे भी जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि वो लोग जो जुर्म करने के बाद तौबा कर ले। तौबा और इस्लाह से क्या होता है कि अल्लाह ताला गुनाह जो है वो माफ कर देता है। तो ऐसे लोग जिनसे गलती हो गई और उसके बाद जो है ये लोग तौबा कर लें, उन्हें पूरी तरह अपने गुनाह का एहसास है, नदामत है कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि दो सजाएं तो उनसे, पहली दोनों सजाएं तो उन्हें भुगतना पड़ेंगी, है ना। और ये जो है ना कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो ये जो गफूर रहीम है इसका मतलब है कि ये कयामत के लिए है, यानी अल्लाह ताला वहां फिर उनको जो है वो सजा नहीं देगा। तो झूठी तोहमत लगाने वाला जब जो है वो समझ, अगर कोई कहता है ना कि फलां जो है उसने जिना किया है, तो वो दो लोगों पर झूठी तोहमत लगाता है ना, कम अज कम दो लोगों पर ना, एक पर लगाता है लेकिन दूसरा उसके साथ शामिल होता है। तो एक मर्द और औरत उसकी तोहमत की लपेट में आए हैं, तो अब जो उसे हद लगेगी तो हर एक के लिए 80 कोड़े नहीं लगेगी बल्कि एक ही दफा लगेगी। अब ये नहीं कि दो दफा 80-80 कोड़े लगेगी, क्या मतलब है, फजले दूम समानी न जल्दा। तो बेशक दोनों उसमें मुलव्वस हैं लेकिन सजा जो है वो क्या है, तो उनको जो है वो 80 कोड़ों की जो है वो सजा दे दो। और दूसरी अहम बात जो हमें पता चलती है कि उन्होंने जब तौबा कर ली, मिम्बाद जालिक से मुराद क्या है कि उसने इल्जाम लगाया और उसके बाद जो है अपने कुजूर की माफी मांगी, मकजूब से भी मांगी और अल्लाह से भी मांगी, तो अल्लाह ताला, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस बंदे को जो है वो माफ कर देगा, लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको सजा तो मिलनी ही है, 80 कोड़ों की सजा मिलेगी। अब अगर हाकिम को पता चल गया है, अदालत तक बात पहुंच गई है, तो तौबा तावोबाहा, तौबा यानी जस्ट मुंह से अल्फाज कहना नहीं है बल्कि क्या है, दिल के एहसास नदामत और अज़्म इस्लाह और रुजू इलल खैर का नाम जो है वो तौबा है। तो अब अल्लाह ताला जो है, यानी उस शख्स ने सच्ची तौबा की है कि नहीं की है, तो अल्लाह जानता है ना दिलों का हाल, तो दुनिया की सजा उसे माफ नहीं होगी लेकिन आखिरत की सजा जो है वो उसकी अल्लाह ताला माफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अगर खाली तौबा करने से जो है वो दुनिया की सजा माफ कर दी जाती तो कौन सा मुजरिम है जो अदालत में जाकर तौबा ना करता, सारे मुजरिम तौबा करते और वहां सजा माफ कर दी जाती है ना। तो इसका ताल्लुक जो है वो आखरत से है कि अल्लाह ताला फिर उसको माफ कर देगा। क्यों? फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, के बेशक अल्लाह जो है वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और हकीकत ये है कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, और अल्लाह ताला से हम सबको जो है वो अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और हम औरतों को खास तौर पर जो है वो डरना चाहिए, किस बात के लिए, कि औरतें इस तरह की बातें ज्यादा करती हैं, औरतों के अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है कि फलां की लड़की, फलां के साथ मैंने उसको खड़े हुए देखा, और अजीब अजीब नजरों से देखना और अजीब अजीब बातें करना, और किसी की भी बेटी बेटी के बारे में जो है जब तक जो है वो यानी बिलफेल उस काम को करते हुए नहीं देखा इन आंखों के साथ, फिर फिर भी नहीं बयान कर सकते, यानी देख भी लिया फिर भी बयान नहीं कर सकते जब तक के चार गवाह मौजूद ना हो। तो आप सोचेंगे फिर कहाँ इजाजत है कि हम सुनी सुनाई बात को आगे ही आगे आगे ही आगे फैलाते जाए। आप सोचें हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे ना। औरतों के अंदर जो ये बीमारी इतनी ज्यादा पाई जाती है कि गंदगी को बजाय इसके कि दबा दिया जाए, उसको सोसाइटी में उठाकर फैलाया जाए, नजासत को पब्लिक में उसका चर्चा कर दिया जाए, तो जितनी अशात होगी जितनी लोगों में ये बुराई पाई जाएगी। और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि बुराई करने वाले बुराई जब कर रहे होते हैं तो जब उसको फैलाया जाता है वो कहते हैं अच्छा पता तो चल गया, उनकी शर्म हया और उठ जाती है, कहते हैं चलो फिर बुरे तो हो ही गए तो बुरे बनकर और क्यों ना दिखा दें, है ना। तो इस तरह जो है ये गुनाह होता चला जाता है। अच्छा यहाँ पर जो है वो जो अगली आयत है, और ये आयत आयत नंबर 6 से 10 तक, ये आयत भी बहुत अहम आयतें हैं। 6 से 10 तक उसमें एक मजमून बयान हुआ है, और ये मजमून जो है ये लियान का कानून है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लियान का कानून बयान किया। लियान का कानून क्या है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाए और अपने इल्जाम को साबित करने के लिए शरीयत की मतलूबा शहादत पेश न कर सके तो उसका फैसला फरीकैन की कसम से होगा। इस कसम के तरीके की यहाँ पे ना वजाहत की गई है, लियान का तरीका। आइए लियान के तरीके को जो है वो समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लज़ीन यरमूना अज़वाजहुम, और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाएं, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसहुम, और उनके पास खुद इनके अपने सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो, वलम यकुल लहुम और ना हो उनके पास शुहदाउ गवाह इल्ला अनफुसहुम मगर उनका अपना नफ्स उनका अपना वजूद, फशहादतु अहदिहिम तो उनमें से एक शख्स की गवाही ये है, शहादत ये है। अब गवाह तो नहीं है ना, अब वो क्या करेंगे, अरब शहादात इन कि वो चार जो है वो चार मर्तबा कसम खाएंगे, बिल्लाह अल्लाह की कसम चार गवाहियां देंगे, अरबाऊ शहादात इन कि अब जो है वो चार मर्तबा गवाही देंगे, बिल्लाही कसम अल्लाह की खाकर, इन्नहु लमिन स्वादिकीन के वो अपने इल्जाम में सच्चा है। इन्नहु हु की ज़मीर क्या बता रही है, इल्जाम लगाने वाला कौन है, मर्द है। हु की ज़मीर ये बता रही है कि इल्जाम लगाने वाला शोहर है, आम मर्द नहीं बल्कि शोहर है। आम पीछे बात होगी ना हम लोगों की, यहाँ पे मियां बीवी की बात है। इन्नहु बेशक वो शोहर जो है लमिन स्वादिकीन वो सच्चों में से है कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है। पल खामिसातु और पांचवी दफा पांचवी बार वो क्या कहेगा, अन्न लानत अल्लाही अलैही कि उस पर अल्लाह की लानत हो। अलैही ही की ज़मीर भी बता रही है कि उस मर्द पर उस शोहर पर अल्लाह की लानत हो, इन काना मिनल काज़िबीन अगर वो अपने इल्जाम में झूठा है, क्योंकि अपनी बीवी को वो ये कह रहा है ना कि इसने जिना किया है। चार मर्तबा वो काजी के सामने कसम खाएगा कि वो सच्चा है, और पांचवी दफा वो ये कहेगा कसम खाकर अल्लाह की कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्जाम में झूठा है। वयदराउ अनहल अजाबा, वयदराउ और हट सकता है, पूरे जोर से ताकत से किसी चीज को हटा देना। अब हटाया जा सकता है अनहा, हा की जमीर किसके लिए आती है, आप औरत है बोले ना जोर से, हाँ की जमीर किसके लिए आती है, औरत के लिए, और हु की जमीर किसके लिए आती है, मर्द के लिए। वयदराऊ अनहल अजाबा और हटाया जा सकता है और टल सकती है सजा, अनहा उस औरत से अल अजाबा सजा, अन तशहदा अरबा शहादतिन कि वो शहादातिन कि वो चार मर्तबा गवाहियां दे, वो चार मर्तबा शहादत दे, बिल्लाही अल्लाह की कसम खाकर, इन्नहु लमिनल काज़िबीन। अब हु की जमीर किसके लिए, अब औरत के लिए हु की जमीर बन गई, हु जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा, मर्द के लिए आएगा। हु जब भी आएगा किसके लिए आएगा, मर्द के लिए आएगा, और हा किसके लिए आएगा, औरत के लिए आएगा। अगर इन आयतों में आपने हु और हा को याद ना कर लिया, जो पहले आप याद कर चुकी हैं, آپ ان آیتوں کا ترجمہ غلط کر دیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اب عورت بے شک قسم کھا رہی ہے اور وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے رہی ہے. کیا گواہی دے رہی ہے؟ انہ بے شک وہ مرد لمن الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ہے. لمن الکاذبین کہ وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. بل خامساتا، اور پانچویں دفعہ وہ اب قسم کھائے گی اللہ کی، پانچویں مرتبہ وہ گواہی دے گی. کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ، کہ اس پر اللہ کی سزا ہو، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے. علیہا، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟
عورت
کے لیے، کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ٹوٹے. ان کانا من الصادقین، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور رحمت، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ تمہیں بڑی مشکل ہوتی، یہ معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی ڈالتا، یہ میاں بیوی کا جو معاملہ تھا. وان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ التفات کرنے والا اور حکیم ہے. یہ تو آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کے ہم نے جو ہے وہ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیان کا قانون ہے، لیان لعنت بھیجنے کا قانون ہے نا، جھوٹے پر دوسرا جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے، یہ کیسے نازل ہوا؟ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب یہ پچھلی آیتیں نازل ہوئیں جس میں حد قصب کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا، حد قصب قذف کا قانون جب نازل ہوا کہ اگر کوئی کسی پر جو ہے وہ کسی پر زنا کی تہمت لگا دے اور وہ ثبوت نہ لائے، ثبوت نہ لائے، چار گواہ نہ لائے، تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں. تو جب حد قذف کا حکم نازل ہوا تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ غیر مرد اور عورت کی بد چلنی تو آدمی برداشت کر سکتا ہے، کہ کوئی غیر مرد عورت غلط کام کر رہا ہے، اگر اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر جب دیکھا ہے وہ بول نہیں سکتا، کیوں نہیں بول سکتا؟ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، بولنے کے لیے گواہ لانا ضروری ہے، اور گواہ لینے جائے گا تو مجرم تو رہیں گے نہیں باقی اسی حالت میں، اور اگر وہ بولے گا اور گواہ نہیں لائے گا تو سزا ملے گی. اب ہوا کیا کہ صحابہ میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ غیروں کو دیکھ کر تو زبان پر تالے چڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ گواہ موجود نہیں ہے، بول سکتے نہیں ہیں، معاملے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کو بدچلنی میں دیکھ لیا تو پھر کیا کرے؟ اگر قتل کر دے تو القتل بالقتل، الحر بالحر، والعبد بالعبد، النفس بالنفس، ہے نا، وہ حکم تو نازل ہو چکا کہ قتل کا بدلہ تو پھر قتل ہے، تو اس کو تو سزا ملے گی. گواہ ڈھونڈنے جائے گا تو مجرم تو ٹھہرا نہیں رہے گا، صبر کرے تو کرے کیسے؟ اگر طلاق دے دے عورت کو تو رخصت کر دیا، لیکن عورت کو کوئی سزا تو نہ ملی، نہ مادی ملی، نہ اخلاقی ملی، اور نہ اس کے وہ عاشق معشوق یعنی اس آشنا کو بھی کوئی سزا نہ ملی. ناجائز حمل ٹھہر جائے اس عورت کو، الگ جو ہے وہ اس کی بچے کی ذمہ داری جو ہے گلے پڑ گئی. اب سوال جب یہ پیدا ہوا تو ہوا کیا، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے ایک فرضی سوال کی حیثیت میں اس کو پیش کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ میں نے اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھا، اگر میں اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سعد بن عبادہ نے کیا کہا کہ اگر میں نے اپنے گھر میں ایسا ہوتے دیکھ لیا تو میں تو تلوار جو ہے نا اس سے فیصلہ کر دوں گا. اب تھوڑی مدت گزری تھی کہ ایسے مقدمات بھی پیش آ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ سوسائٹی کتنی بری سوسائٹی تھی، اور آج کی جدید سوسائٹی تو بروں سے بھی زیادہ بری ہے. اب تو حیرت ہوتی ہے مغرب کی سوسائٹی میں، جیسے ڈنمارک ہے یا بعض ممالک ہے، وہاں پہ جو لوگ نکاح کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی میاں بیوی کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور وہ یعنی اس سوسائٹی میں کیا چیز عام ہے. एक औरत कई कई मर्दों से रह रही है, एक मर्द कई कई औरतों के साथ रह रहा है, बच्चों बच्चे कई कई मर्दों के पास जा रहे हैं, कई कई माओ के पास जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। जो फैमिली सिस्टम है ना वो बिल्कुल टूट फूट चुका है। तो ये जो है ना, इकबाल ने ठीक कहा था, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है ना, और ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख शहर कर ना सका। कि आप सोचें कि धड़का लगा हुआ होता है यहाँ पे हर वक्त ना। और बहरहाल तो अब हुआ क्या कि कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मुकदमे पेश हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह की रवायात हैं कि अंसार में से एक शख्स, गालिबन कहते हैं ओवैमर, ओवैमर ऐन बो या मीमरा, ओवैमर अजलानी ने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक शख्स अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को पाए और मुंह से बात निकाले तो आप हद कस्ब जारी कर देंगे, कत्ल कर दे तो आप उसे कत्ल कर देंगे, चुप रहे तो गैज में मुब्तला रहे, आखिर वो क्या करे। इस पे हुजूर ने दुआ की, अल्लाह इस मामले का फैसला कर। ये मुस्लिम बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह एक और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह की रवायत है कि हिलाल बिन उमैया ने आकर अपनी बीवी का मामला पेश किया, जिसे उन्होंने बचशम खुद मुलव्वस देखा था, उन्होंने अपनी बीवी को किसी मर्द से देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके उन्होंने अपना बीवी का जो मसला सुनाया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबूत लाओ वरना तुम पर हद कस्ब जारी होगी। सहाबा में आम परेशानी फैल गई और हिलाल ने कहा, उस खुदा की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं बिल्कुल सही वाकया अर्ज कर रहा हूँ जिसे मेरी आंखों ने देखा और कानों ने सुना है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे मामले में ऐसा हुक्म नाजिल करेगा जो मेरी पीठ बचा देगा। कहते हैं इस पर ये आयत नाजिल हुई, बुखारी ने इसको रवायत किया है। आप देखिए कि हिलाल बिन उमैया के मुकदमे की जो तफसीलात हमें सिहाह सित्ता में मिलती हैं, कहते हैं इनमें बयान किया गया है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलाल और इनकी बीवी जो थी दोनों को अपनी अदालत में हाजिर किया। जब वो हाजिर हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये जो आयतें थी ना, ये आयतें पढ़कर सुनाई। और जब आयतें उनको पढ़कर सुनाई, पहले हुक्म खुदावंदी सुनाया, फिर फरमाया, खूब समझ लो आखरत का अजाब दुनिया के अजाब से ज्यादा सख्त चीज है। हिलाल रजी अल्लाह ने अर्ज किया, मैंने इस पर बिल्कुल सही इल्जाम लगाया है। औरत ने कहा, यह बिल्कुल झूठ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो इन दोनों में मलानत कराई जाए। मलानत के माने क्या है? लानत करवाना। क्योंकि आप देखें कि ये आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 9 तक आप ये पढ़ती है ना कि अन लानत अल्लाह अलैह है ना, कि उन पर लानत हो अल्लाह की, जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। चार कसम के बाद पांचवी कसम पर आप ये पढ़ती हैं, और एक आयत 9 में आप पढ़ती हैं अन गदब अल्लाह अलैहा, अल्लाह का अजाब टूटे इस पर, और जिस पर अल्लाह का अजाब टूटता है वो अल्लाह की रहमत से महरूम होता है, यही लानत है अल्लाह की। जब असाबे सब्त पर अल्लाह की लानत की गई तो हुआ क्या था? कूनू किरदतन खासेन, वो बंदर बना दिए गए थे, इंसान नहीं रहे थे। तो अल्लाह का जब अजाब आता है तो अल्लाह की रहमत से लोग महरूम हो जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो इन दोनों में मलानत कराई जाए। चुनाचे पहले हिलाल उठे और उन्होंने हुक्म कुरानी के मुताबिक कसमें खाने शुरू की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान बार बार फरमाते रहे, अल्लाह को मालूम है तुम में से एक जरूर झूठा है, फिर क्या तुम में से कोई तौबा करेगा? पांचवी कसम से पहले हाजरीन ने हलाल से कहा, खुदा से डरो, दुनिया का अजाब आखरत के अजाब से हल्का है, ये पांचवी कसम तुम पर अजाब वाजिब कर देगी। मगर हलाल रजी अल्लाह ने कहा, जिस खुदा ने यहाँ मेरी पीठ बचाई है वो आखरत में भी मुझे अजाब नहीं देगा। ये कहकर उन्होंने पांचवी कसम भी खा ली। फिर औरत उठी और उसने भी कसमें खानी शुरू की। पांचवी कसम से पहले उसे भी रोक दिया गया कि खुदा से डर, आखरत के अजाब की बनिस्बत दुनिया का अजाब बर्दाश्त कर लेना आसान है, यह आखिरी कसम तुझ पर अजाब इलाही को वाजिब कर देगी। ये सुनकर वो कुछ देर रुकती और झिझकती रही। लोगों ने समझा इतराफ करना चाहती है, मगर फिर कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने कबीले को रुस्वा नहीं करूंगी, और पांचवी कसम भी खा गई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान तफरीक करवा दी और फैसला फरमाया कि उसका बच्चा जो उस वक्त पेट में था ये माँ की तरफ मंसूब होगा, बाप का नहीं पुकारा जाएगा। नंबर वन, आपने क्या कहा कि बच्चा माँ की तरफ मंसूब होगा, बाप का नहीं पुकारा जाएगा। जैसे बच्चा जो है बिन या बिंत जो भी होगा, माँ का नाम उसके आखिर में आएगा। नंबर दो, किसी को इस पर या इसके बच्चे पर इल्जाम लगाने का हक नहीं होगा। अब दोनों में से एक झूठा तो था ना, है ना, लेकिन अब दोनों ने जब ये बात कह दी तो, और हजरत हलाल तो थे ही सच्चे कि कुरान की आयतें नाजिल हो गईं, तो अब दोनों को में से किसी को कोई झूठा नहीं कह सकता। किसी को इस पर या इसके बच्चे पर, यानी माँ पर या इसके बच्चे पर इल्जाम लगाने का हक नहीं होगा। नंबर तीन, जो इस माँ पर या इसके बच्चे पर इल्जाम लगाएगा वो हद कजफ का मुस्तहिक ठहरेगा, ठीक है। नंबर चार, इसको जमाना इद्दत के नफके और सकूनत का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हजरत हिलाल जो है वो उसको इद्दत के दिनों में जो है वो नान नफका उसकी जिम्मेदारी अदा करें। अच्छा, क्योंकि ये तलाक जो थी ये वफात के बगैर थी और जो है वो तलाक के भी बगैर थी। औरत कैसे जो है वो अलग होती है शौहर से, तीन तरीके हैं ना। एक तो जिंदगी में शौहर उसको तलाक दे दे, दूसरा तरीका ये कि शौहर उसका फौत हो जाए, और तीसरा तरीका कौन सा आपने पढ़ा, लियान। खुला का भी है, यानी औरत जब खुद ले लेती है, लेकिन शौहर शौहर जब उसको फारिग कर देता है तो क्या तरीका है, तलाक का है, या शौहर दुनिया से चला जाए, या लियान, लियान से। वो के खुला से भी वो अलग हो जाती है, लेकिन उसमें औरत खुद खुला लेती है, ये चौथा तरीका आप कह सकती हैं। तो अब यहाँ पे ना तो तलाक से औरत फारिग हो रही थी, ना ही वफात से। फिर आपने लोगों से कहा इसके हाँ जब बच्चा हो तो देखो ये किस पर गया है, अगर इस शक्ल का हो तो हिलाल का है, और अगर इस सूरत का हो तो उस शख्स का है जिसके बारे में इस पर इल्जाम लगाया गया है। वजाए हमल के बाद जब देखा गया तो वो दूसरी सूरत का था, हजरत हिलाल से नहीं मिलता था। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कसमें ना होती कि अल्लाह की किताब पहले ही फैसला न कर चुकी होती तो मैं सौरत से बुरी तरह जो है वो पेश आता। तो आप देख लीजिए कि हजरत हिलाल के बारे में ये मुकदमा। अच्छा, दूसरा मुकदमा हजरत ओवैमर का था, और कहते हैं कि हजरत ओवैमर और इनकी बीवी दोनों मस्जिद नबी में बुलाए गए। मुलानत से पहले हजूर ने उनको भी तंबीह करते हुए तीन बार फरमाया, अल्लाह खूब जानता है तुम में से एक जरूर झूठा है, फिर क्या तुम में से कोई तौबा करेगा। जब किसी ने तौबा ना की तो दोनों में मलानत करा दी गई। इसके बाद ओवैमर ने कहा रजी अल्लाह अन्हो, या रसूलुल्लाह अब अगर मैं इस औरत को रखूं तो मैं तो झूठा हूं। ये कहकर उन्होंने तीन तलाकें दे दी बगैर इसके कि हुजूर ने उनको ऐसा करने का हुक्म दिया होता। सहल बिन साद कहते हैं कि इन तलाकों को हुजूर ने नाफिज फरमा दिया, इनके दरमियान तफरीक करा दी, और फरमाया ये तफरीक है हर ऐसे जोड़े के मामले में जो बहम लियान करे, और सुन्नत ये कायम हो गई कि लियान करने वाले जोजैन को जुदा कर दिया जाए, फिर वो पूरी जिंदगी कभी जमा नहीं हो सकते, फिर वो दोनों कभी जमा नहीं हो सकते, क्योंकि जो है वो लियान के जरिए जो है वो अलग हुए हैं। अच्छा, अब ऐसे में हजूर ने जो है जब इनमें तफरीक करवाई तो सहल बिन सादिया ये बयान करते हैं, औरत हामला थी और अवैमर ने कहा यह हमल मेरा नहीं है, इस पर बच्चा माँ की तरफ मंसूब कर दिया गया, सुन्नत ये जारी हुई कि इस तरह का बच्चा माँ से मिरास पाएगा और माँ ही इसकी जो है वो मिरास पाएगी। अच्छा, तो इन सारी बातों से जो है वो क्या बात पता चलती है कि आप देखें कि लियान करने वाले जो हैं ये जोजैन कभी जमा नहीं हो सकते, इनका कभी भी निकाह नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि दोनों में से एक झूठा तो है, और जैसे कराइन से जो है वो क्या पता चलता है कि जो है वो मर्द सच्चा था और औरत झूठी, है ना, सहाबी सच्चे थे और औरत झूठी, लेकिन ये कि जब दोनों ने कसम खा ली तो मामला जो है रसूल अल्लाह ने अल्लाह पर छोड़ दिया। और एक मौके पे आपने फरमाया तुम्हारा हिसाब अब अल्लाह के जिम्मे है, तुम में से एक भरल झूठा है। फिर आपने मर्द से फरमाया अब ये तेरी नहीं रही, ना तू इस पर कोई हक जता सकता है, ना किसी किस्म की दस्त दराजी, ये तेरी दूसरी जो इंतकामाना हरकतें हैं तू इसके खिलाफ कोई इंतकामाना हरकत भी नहीं कर सकता। मर्द ने कहा या रसूलल्लाह वो मेरा माल वो मेहर वो तो मुझे दिलवाई है जो मैंने इसे दिया था। फरमाया माल वापस लेने का तुझे कोई हक नहीं, अगर तूने इस पर जो इल्जाम लगाया तू उस पर सच्चा है तो तू इससे लज्जत उठा चुका, तूने हलाल करके उससे फायदा उठाया, और अगर तू अपने इल्जाम में झूठा है तो माल तुझसे और भी ज्यादा दूर चला गया और वो इसकी बनिस्बत उससे ज्यादा दूर है। ये बुखारी की रवायत है। अच्छा, इसी तरह एक अरबी ने रसूल अल्लाह के पास वो हाजिर हुआ और कहने लगा मेरी बीवी ने काला लड़का जना है और मैं नहीं समझता कि वो मेरा है, लड़के के रंग ने उसे शुबे में डाल दिया, और वरना बीवी पर जिना का इल्जाम लगाने का इसके पास कोई करीना नहीं था, कोई वजह नहीं थी। आपने पूछा तेरे पास कुछ ऊंट तो होंगे, उसने अर्ज किया हाँ। आपने पूछा इनके रंग कैसे हैं, कहने लगा सुर्ख। आपने पूछा इनमें कोई बुरा भी है खाकस्तरी भी है, कहने लगा जी हाँ बाज ऐसे भी हैं। आपने पूछा ये रंग कहाँ से आया, कहने लगा शायद कोई रंग खींच ले गई, यानी इनके बाप दादा में से किसी का बुरा रंग होगा और इसी का असर इनमें आ गया। फरमाया शायद इस बच्चे को भी कोई रंग खींच ले गई और आपने उसे नफिये वल्द बच्चे के नसब से इनकार की इजाजत न दी। ये बुखारी की रवायत है, बुखारी और मुस्लिम की। इसका ये नहीं मतलब कि ऐसे ही कोई उठकर जो है वो कुछ भी कह दे। आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेहतरीन काजी थे। इसी तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह की एक रवायत है कि रसूल अल्लाह ने आयत लियान पर बात करते हुए फरमाया जो औरत किसी खानदान में ऐसा बच्चा घुसा लाए जो उसके खानदान का नहीं है उसका अल्लाह से कुछ वास्ता नहीं, अल्लाह इसको जन्नत में हरगिज दाखिल ना करेगा, और जो मर्द अपने बच्चे के नसब से इनकार करे हालांकि बच्चा उसको देख रहा हो अल्लाह कयामत के रोज इसे पर्दा करेगा और उसे तमाम अगली पिछली इंसानियत के सामने रुसवा कर देगा। तो आप देख लीजिए कि लियान का कानून और इसके जो है वो फैसले और इसकी जो जो शराइत है तो इन सारी बातों से जो बात हमारे सामने आती है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हर तरह के मसाइल का जो है ना वो हल निकाला है। और अब देखें कि मियां बीवी का रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता कि जो है वो गवाहियां ढूंढ कर लाई जाएं। तो कहा कि कस्मों के जरिए लियान जो है का कानून जो है वो नाफिज किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो समझ कर अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। ये आयतों को पढ़ते हुए मेरे सामने अमेरिका का एक वाकया पेश आया। एक औरत ने मुझसे कहा कि जो है वो गैब का इलम तो अल्लाह जानता है, लेकिन उस औरत ने जो बात पेश की लगता ऐसा था कि शायद वो उसका मसला था। वल्लाहु आलम, गैब का इलम अल्लाह जानता है, जाहिर है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो जिस तरह से बात कर रही थी लगता ऐसा था। उस तो वो औरत ये बता रही थी कि एक बच्चा जो है ना वो किसी और का है, औलाद में एक बच्चा किसी का है, और वो जॉब करती थी और फिर ऑफिसर के साथ उनको फिर कोई मजबूरी ऐसी हुई कि उसको ये करना पड़ा कि, और वो ये कह रही थी कि शौहर को नहीं पता, उसके शौहर को नहीं पता अब उसको क्या करना चाहिए, और के बहुत ही परेशानी होती है कि वो क्या करे ना। तो बहरहाल वो उस औरत का था या नहीं था, या और भी कहीं भी सोसाइटी में अगर ऐसे मसले मसाइल जो हैं वो पेश आए तो काजी और जज के पास जाना चाहिए और फिर पूछना चाहिए। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये सारी हुदूद के लिए ना इस्लामी जो है वो स्टेट का होना बहुत जरूरी है, जब तक इस्लामी स्टेट ना होना ये हदें कायम नहीं हो सकती। तो खामोश रहकर भी तौबा इस्तग़फ़ार किया जा सकता है कि इन सब लोगों का मामला फिर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ करे और हम सबको बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।